चलिए एक स्थिति के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए कि किसी के पास बिल्कुल नई तकनीक वाला बहुत ही महंगा स्मार्टफोन है,
ठीक है।
लेकिन वो इंसान उस फोन की स्क्रीन देखने से साफ मना कर दे और जिद पकड़ ले कि वो सिर्फ फोन के वाइब्रेशन को महसूस करके ही सारे मैसेज डिकोड करेगा।
अरे ये तो मतलब बहुत ही बेवकूफी भरी बात लगेगी।
बिल्कुल, सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन जब बात आध्यात्मिकता और समझदारी की आती है ना, तो दुनिया भर में बहुत से लोग ठीक ऐसा ही रवैया अपनाते हैं।
हाँ ये एक बहुत आम बात है।
समाज में ये एक बहुत गहरी गलतफहमी है कि तर्क या बुद्धि का मतलब आध्यात्मिकता से कोई लेना देना ही नहीं है।
लोग मान बैठते हैं कि विज्ञान और तर्क तो बिल्कुल स्पष्ट होते हैं, जैसे कोई मेडिकल एक्सरे रिपोर्ट।
सही का, और आध्यात्मिकता को बस एक धुंधली सी भावना मान लिया जाता है, जहां दिमाग का इस्तेमाल करना जैसे मना हो। बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे इंसान की बुद्धि और उसकी आत्मा एक दूसरे के जानी दुश्मन हो। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम इसी धारणा को जड़ से उखाड़ने वाले हैं।
हाँ और ये बहुत जरूरी भी है।
तो डॉक्टर क्रेग कीनर के रोमियो अध्याय 8 पद 5 से 26 पर दिए गए व्याख्यान के आधार पर आज का ये विस्तृत अध्ययन मानव बुद्धि, आध्यात्मिक मार्गदर्शन और जीवन के कष्टों के बीच के उलझे हुए तारों को सुलझाने का एक प्रयास है।
इस पूरी चर्चा की नींव ही इस बात पर टिकी है कि देखें, हमें इंसान को टुकड़ों में नहीं देखना है, बल्कि उसे एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखना होगा।
मतलब हम शरीर और आत्मा को अलग-अलग बॉक्स में नहीं रख सकते।
बिल्कुल नहीं। प्राचीन विचार को और स्वयं संत पॉल के लेखन का गहराई से विश्लेषण करने पर एक बात बहुत स्पष्ट होकर उभरती है, ईश्वर केवल इंसान की भावनाओं या उसके हृदय के एक छोटे से हिस्से को प्रभावित नहीं करता।
तो वह हमारी बुद्धि पर भी काम करता है।
वो सीधे तौर पर इंसान की सोचने की क्षमता, उसकी बुद्धि और मतलब उसकी दुनिया को देखने के नजरिए को आकार देता है। डॉक्टर कीनर के खुद की जीवन यात्रा इस बात का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है।
अच्छा, उनके साथ क्या हुआ था?
जब वे नास्तिकता को छोड़कर मसीही विश्वास में आए, न तो शुरुआत में वे भी इसी गलतफहमी का शिकार हो गए थे। उन्हें लगने लगा था कि चूंकि अब वे एक आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं,
तो उन्हें अपना दिमाग बंद कर लेना चाहिए।
हाँ उन्हें लगा कि धर्म ग्रंथों को समझने के लिए अपने दिमाग पर जोर डालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। उनका मानना था कि बस कोई रहस्यमयी आध्यात्मिक प्रकाश मिलेगा और सब कुछ अपने आप समझ आ जाएगा।
ये तो एक तरह का बौद्धिक आलस्य हो गया। अक्सर लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वे बहुत ज्यादा तार्किक रूप से सोचेंगे तो कहीं उनका विश्वास कमजोर ना पड़ जाए।
ठीक इसी डर ने डॉक्टर कीनर को भी जकड़ लिया था। अपने रूपांतरण से पहले वे अपने बुद्धि पर इतना ज्यादा घमंड करते थे कि उन्होंने इसे एक तरह की मूर्ति बना लिया था।
ओहो, मतलब बुद्धि उनके लिए सब कुछ थी।
बिल्कुल। इसलिए जब वे विश्वास में आए तो वे एकदम विपरीत दिशा में चले गए। वे बाइबल के पन्ने पलटते और खुद को समझाते कि उन्हें कुछ भी विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन मुझे यकीन है कि यह तरीका ज्यादा दिन चला नहीं होगा।
एकदम सही, ये रवैया ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। एक दिन जब उन्हें भीतर से ये प्रबल एहसास हुआ कि उन्हें किसी विशिष्ट बात को समझना ही चाहिए और फिर भी उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग करने से इनकार किया,
तो क्या हुआ?
अचानक उनके दिमाग में बाइबल के 10 अलग अलग हिस्से एक साथ कौंध गए। और दिलचस्प बात ये थी कि वे 10ों हिस्से स्पष्ट रूप से समझ और बुद्धि के महत्व पर जोर दे रहे थे।
अरे वाह, ये तो उनके लिए मतलब एक बहुत बड़ा झटका रहा होगा।
हाँ इसने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ईश्वर इंसान की संज्ञानात्मक और भावनात्मक दोनों क्षमताओं का एक साथ उपयोग करना चाहता है।
ये वाक्या बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है, लेकिन अगर हम अपनी बुद्धि को स्विच ऑफ नहीं कर रहे हैं तो हम तार्किक दुनिया के सबसे बड़े नियम से कैसे निपटें?
आप किस नियम की बात कर रही हैं?
मेरा मतलब है कि तर्क की दुनिया में हर चीज का साक्ष्य यानी सबूत चाहिए होता है। अगर बुद्धि का इस्तेमाल करना ही है तो हम किसी आध्यात्मिक दावे को परखेंगे कैसे? यहीं पर ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी का विषय सामने आ जाता है कि हम किसी चीज को कैसे सच मानते हैं।
साक्ष्यों को परखने का ये नजरिया ही असल में पूरी बहस की दिशा तय करता है। डॉक्टर कीनर एक ऐतिहासिक विद्वान रहे हैं और मतलब उनके पेशे की मांग ही यही है कि हर दावे के पीछे ठोस सबूत होने चाहिए।
हाँ, एक इतिहासकार तो बिना सबूत के कुछ नहीं मानेगा।
बिल्कुल। पर एक समय उनके जीवन में ऐसा आया जब ये अकादमिक आदत उनकी निजी जिंदगी पर हावी होने लगी थी। एक दिन उनकी पत्नी ने कोई बहुत ही सामान्य और रोजमर्रा की बात कही।
अच्छा।
और कीनर ने अपनी आदत से मजबूर होकर तुरंत पूछ लिया, क्या तुम अपने इस दावे का सबूत दे सकती हो?
ओहो, एक पति के रूप में ये सवाल पूछना तो किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। मुझे यकीन है इसके बाद उन्हें अपनी गलती का तुरंत एहसास हो गया होगा।
हाँ, बिना किसी शक के। उन्होंने खुद भी यही माना कि चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, अपनी पत्नी से ऐसे सबूत मांगना मुसीबत को बुलावा देना है।
बिल्कुल।
लेकिन देखिए, इस मजाकिया घटना के पीछे एक बहुत गहरा दार्शनिक सत्य छिपा था। इस घटना ने उन्हें ये एहसास दिलाया कि हर विषय का अपना एक अलग दायरा और साक्ष्य का एक अलग पैमाना होता है। हम हर जगह एक ही थर्मामीटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
आपका मतलब है कि जो पैमाना साइंस का है वो इतिहास का नहीं हो सकता?
एकदम सही। विज्ञान में हम अवलोकन करते हैं, चीजों को लैब में बार बार दोहराकर प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इतिहास, कानून, समाजशास्त्र या यहां तक कि पत्रकारिता में ये संभव नहीं है। जूलियस सीजर की हत्या को आप किसी प्रयोगशाला में दोबारा नहीं दोहरा सकते।
हाँ, वो तो इतिहास की बात है।
वहां हमें उन लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है जो उस समय मौजूद थे, यानी भरोसेमंद चश्मदीद गवाह।
लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर हम सिर्फ भरोसेमंद गवाहों की गवाही को ही अंतिम सबूत मान लें, तो क्या हम कन्फर्मेशन बायस का शिकार नहीं हो जाएंगे?
आप इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगे?
मेरा मतलब है कि दुनिया चमत्कारों को लेकर बहुत बटी हुई है। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही ये मान ले कि ईश्वर चमत्कार करता है, तो वो हर छोटी बड़ी इत्तेफाक को चमत्कार का नाम दे देगा ना? क्या ये आध्यात्मिक विषयों पर बात करते समय हमारी तार्किक कसौटी को कमजोर करना नहीं हुआ?
ये एक बहुत ही जायज और महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन इसे दार्शनिक डेविड ह्यूम के नजरिए से समझना होगा।
डेविड ह्यूम, उन्होंने क्या कहा था?
ह्यूम ने ज्ञान मीमांसा को बहुत ही सीमित कर दिया था। उनका तर्क था कि चूंकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कभी कोई चमत्कार नहीं देखा है, इसलिए जो लोग चमत्कारों की गवाही देते हैं वो या तो झूठ बोल रहे हैं या भ्रमित हैं।
ये तो बहुत ही बंद दिमाग वाला नजरिया लग रहा है।
बिल्कुल। कीनर बताते हैं कि ये कोई निष्पक्ष या वस्तुनिष्ठ नजरिया नहीं है, ये तो डेटा को अपने पहले से तय किए गए सांचे में जबरदस्ती फिट करना हुआ।
हाँ, मतलब अगर आप पहले ही तय कर लें कि कुछ मुमकिन नहीं है, तो फिर आप सबूतों को देखेंगे ही नहीं।
ठीक यही बात है। अगर कोई ऐसे समाज या विचारधारा से आता है जो चमत्कारों को सिरे से खारिज करता है, तो उसके सामने चाहे कितने भी मजबूत सबूत क्यों न रख दिया जाए,
वो इंसान कोई ना कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण ढूंढ ही लेगा।
हाँ, भले ही वो स्पष्टीकरण कितना भी बेतुका क्यों ना हो।
तो मतलब बात सबूतों की कमी की नहीं है, बात उस चश्मे की है जिससे हम उन सबूतों को देख रहे हैं।
बिल्कुल। यदि हम इस संभावना को ही खारिज कर दें कि ईश्वर इतिहास में कार्य कर सकता है, तो हम कभी भी साक्ष्यों का सही मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम इस संभावना को खुला रखते हैं, तो हम तार्किक कसौटी को कम नहीं कर रहे हैं,
बल्कि हम उस विषय के लिए सबसे उपयुक्त ज्ञानमी मानसा का उपयोग कर रहे हैं।
हाँ, कीनर खुद कहते हैं कि ह्यूम की वो सीमित दार्शनिक सोच असल जिंदगी में उनके अध्ययन कक्ष के बाहर कभी काम ही नहीं आ सकती थी।
तो अगर ये चश्मा या हमारा नजरिया साक्ष्यों को देखने का तरीका पूरी तरह से बदल देता है, तो ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाता है कि संत पॉल के नजरिए ने मानवता को किस तरह देखा।
बिल्कुल। रोमियो अध्याय 8 में पॉल इंसान के फितरत को दो बहुत ही सख्त हिस्सों में बांटते हुए नजर आते हैं।
हाँ, शरीर वाले और आत्मा वाले। किसी भी नए इंसान के लिए ऐसी सख्त श्रेणियां बहुत घबराहट पैदा कर सकती हैं।
और ये घबराहट अस्वाभाविक नहीं है। कीनर ने प्लेटो के दर्शन का बहुत गहरा अध्ययन किया था, जिसमें शरीर और आत्मा के बीच एक बहुत ही स्पष्ट द्वैतवाद या बंटवारा था।
तो क्या पॉल भी उसी बंटवारे की बात कर रहे थे?
शुरुआत में कीनर को भी यही लगा। जब उन्होंने पॉल की इन बातों को पढ़ा तो वे भी घबरा गए। उन्हें लगता था कि उनका जीवन किसी पेंडुलम की तरह है, कभी वे आत्मा के प्रभाव में होते हैं और कभी फिसलकर शरीर की प्रवृत्तियों में गिर जाते हैं।
ऐसा महसूस होता होगा जैसे उनकी आध्यात्मिक स्थिति हर दिन या हर घंटे आ जा रही हो। ये तो बहुत थका देने वाला होगा।
बहुत ज्यादा। लेकिन बाद में उन्होंने ये समझा कि पॉल यहाँ प्राचीन काल के एक बहुत ही विशिष्ट अलंकारिक तरीके का उपयोग कर रहे थे, जिसे आदर्श श्रेणियां या आइडियल टाइप्स कहा जाता है।
आइए इन आदर्श श्रेणियों को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। क्या ये केवल साहित्यिक तरीका था या इसका कोई गहरा अर्थ था?
देखिए, प्राचीन काल में चाहे वो यूनानी दर्शन हो या यहूदी साहित्य, इस तरीके का खूब इस्तेमाल होता था। उदाहरण के लिए, स्टोइक दार्शनिक हमेशा दुनिया को दो हिस्सों में बांटते थे, एक तरफ ज्ञानी और दूसरी तरफ मूर्ख।
अच्छा, तो क्या उनके हिसाब से कोई पूरी तरह से ज्ञानी हो सकता था?
यही तो मजेदार बात है। अगर आप किसी बड़े स्टोइक विचारक से भी पूछते कि क्या वो पूरी तरह से 100% ज्ञानी बन चुका है, तो वो ईमानदारी से कहता कि नहीं, वो अभी भी उस आदर्श दिशा की ओर सिर्फ प्रगति कर रहा है।
मतलब ये एक तरह का चरम बिंदु था जिसे लक्ष्य माना जाता था।
बिल्कुल। इसी तरह मृत सागर के हस्तलेखों में रोशनी के बच्चे और अंधेरे के बच्चे जैसी श्रेणियां मिलती हैं।
तो पॉल का ये मतलब कतई नहीं था कि आत्मा वाला व्यक्ति कभी कोई गलती नहीं कर सकता या वो एकदम सिद्ध हो चुका है।
एकदम नहीं। इसे पहले योहन्ना के विरोधाभास से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। एक ही पत्र में लेखक अध्याय 3 में लिखता है कि जो ईश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता।
और फिर उसी पत्र में शायद ये भी लिखा है कि अगर हम कहें कि हमने पाप नहीं किया।
हाँ, पहले ही अध्याय में वो चेतावनी देता है कि यदि कोई कहे कि उसमें पाप नहीं है तो वो खुद को धोखा दे रहा है।
तो ये कोई तार्किक त्रुटि नहीं है?
नहीं, ये आदर्श श्रेणियां दरअसल इंसान के मूल स्वभाव और उसके निर्भरता के स्रोतों को दिखाती हैं। शरीर वाले वे हैं जो पूरी तरह से अपने अहम और अपनी क्षमताओं पर निर्भर हैं,
और आत्मा वाले वे हैं जो अपने जीवन की दिशा के लिए ईश्वर की शक्ति पर निर्भर हैं।
बिल्कुल सही।
इसे समझने के लिए एक कंपास की कल्पना की जा सकती है। ये किसी लाइट स्विच की तरह नहीं है कि आप 100% रोशनी में हैं या 100% अंधेरे में।
हाँ, कंपास वाला उदाहरण बहुत सटीक है।
बल्कि ये कंपास की सुई की तरह है। मान लीजिए कोई पहाड़ी और ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चल रहा है, हो सकता है कि वो ठोकर खाकर गिर जाए या किसी चट्टान की वजह से एक पल के लिए उसका रास्ता थोड़ा भटक जाए।
बिल्कुल।
लेकिन जब वो संभल कर खड़ा होता है और अपने कंपास को देखता है तो उसकी सुई लगातार एक ही दिशा की ओर इशारा कर रही होती है। मूल बात ये है कि इंसान की मंजिल की दिशा क्या है, ना कि उसके हर कदम की सिद्धता।
ये बहुत ही शानदार तुलना है। और देखिए, जब वो कंपास सही दिशा में सेट हो जाता है तो सवाल उठता है कि वो आत्मा व्यक्ति को दैनिक जीवन के फैसलों में कैसे निर्देशित करती है।
हाँ, रोमियो 8 का अगला हिस्सा इसी पर बात करता है ना?
बिल्कुल। कीनर इस बात पर जोर देते हैं कि आत्मा का जो मूल स्वभाव है वो शांति है। फिलिपियों के पत्र में भी चिंताओं को सौंपने और एक शांत मन रखने की बात की गई है।
लेकिन असल जिंदगी के तूफानों के बीच वो शांति खोजना इतना आसान नहीं होता। मैंने उन स्रोतों में एक बहुत ही परेशान कर देने वाली घटना के बारे में देखा जहां डॉक्टर कीनर को खुद एक भयंकर पैनिक अटैक का सामना करना पड़ा था।
हाँ, और वो घटना दिखाती है कि दार्शनिक रूप से शांत रहने और आत्मा द्वारा दी गई सच्ची शांति में कितना बड़ा अंतर है। कीनर कोटे डी आइवर में 1700 पादरियों के एक विशाल सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
बापरे, 1700 पादरी, ये तो बहुत बड़ी भीड़ है।
हाँ, और उसी दौरान मलेरिया से बचने के लिए ली गई एक दवा के साइड इफेक्ट के कारण उन्हें अचानक भयंकर पैनिक अटैक आने लगे।
ओह,
मंच पर।
हाँ,
उनके लिए वो अनुभव इतना नया और डरावना था कि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके शरीर और दिमाग को क्या हो रहा है, जिसने उनकी घबराहट को और भी बढ़ा दिया।
ये तो किसी के लिए भी बहुत डरावना होगा।
बिल्कुल। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि केवल अपनी इच्छा शक्ति से या दार्शनिक विचारों से चिंताओं को दबाने की कोशिश करना काम नहीं आता।
तो फिर क्या काम आता है?
अपनी कमजोरियों को और अपनी परिस्थितियों को पूरी तरह से ईश्वर को सौंपने से ही वो सच्ची शांति मिलती है जो हर समझ से परे है।
जब हम इस शांति और मार्गदर्शन की बात करते हैं तो ये असल में रोजमर्रा के जीवन में दिखता कैसा है? कीनर के जीवन की ही एक और घटना है जो लोरेना नाम की एक महिला से जुड़ी है।
हाँ, वो कहानी तो बहुत ही अद्भुत है।
वो वाक्या इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि जब आत्मा किसी को निर्देशित करती है तो परिस्थितियां कैसे अपने आप आकार लेने लगती हैं।
ये घटना सचमुच झकझोर देने वाली है। एक बुधवार की शाम डॉक्टर कीनर अपनी कक्षा में पढ़ाने की तैयारी कर रहे थे और विडंबना देखिए, उनका उस दिन का विषय ही था आत्मा द्वारा निर्देशित होना।
कितनी अजीब बात है ना, मतलब विषय ही वही था।
हाँ, और अचानक उन्हें अपने भीतर एक बहुत ही मजबूत प्रेरणा महसूस हुई कि उन्हें अपनी किताबें छोड़कर तुरंत घर से बाहर जाना चाहिए,
बिना किसी मंजिल के।
हाँ, उन्हें नहीं पता था कि कहाँ जाना है या क्यों जाना है। वे बस गलियों में बिना किसी मंजिल के एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक चलते गए। काफी दूर जाने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब रुक जाना चाहिए।
और फिर?
मतलब उन्होंने मुड़कर देखा तो उन्हें वहां अपने हाई स्कूल का एक बहुत पुराना दोस्त बैठा हुआ दिखाई दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वो दोस्त ईश्वर में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था।
मतलब वो नास्तिक था
पूरी तरह से।
और कहानी में सबसे बड़ा मोड़ ये है कि उस दोस्त के साथ एक और महिला बैठी थी।
हाँ, उसके साथ लोरेना बैठी थी। लोरेना एक ऐसी महिला थी जो बचपन के गहरे आघातों के कारण गंभीर रूप से शराब की लत का शिकार हो चुकी थी।
उसका जीवन बहुत मुश्किल रहा होगा।
बहुत दर्दनाक रहा था, और वो धर्म के नाम पर होने वाले किसी भी पाखंड से सख्त नफरत करती थी। कीनर उससे सिर्फ एक बार पहले मिले थे और उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे।
तो फिर उस दिन क्या हुआ?
उस दिन उस गैर विश्वासी दोस्त ने लोरेना के सामने कीनर के चरित्र की जो गवाही दी, उसने सब कुछ बदल दिया। एक नास्तिक व्यक्ति ने लोरेना से कहा कि कीनर कोई पाखंडी इंसान नहीं है।
अरे वाह, एक नास्तिक ने एक विश्वासी की तरफदारी की।
बिल्कुल, उसने कहा कि वे वास्तव में वही जीवन जीते हैं जिसका वे दावा करते हैं, और केवल उस नास्तिक व्यक्ति की गवाही के कारण ही लोरेना ने कीनर से वह आध्यात्मिक संदेश सुना।
ईश्वर ने एक गैर विश्वासी का उपयोग करके एक नफरत करने वाली महिला के लिए रास्ता खोल दिया। ये कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है।
सच में यह हमें सोचने पर मजबूर कर देती है।
लेकिन ये एक बहुत ही उलझा देने वाला सवाल भी पैदा करती है। जब किसी इंसान को बिना मंजिल जाने गलियों में चलने जैसी कोई आंतरिक प्रेरणा महसूस होती है, तो वो कैसे भेद करे?
आपका मतलब है कि वह सही है या गलत?
हाँ, कोई कैसे तय करे कि ये वास्तव में कोई ईश्वरीय मार्गदर्शन है या बस उसके अवचेतन मन की कोई उपज या शायद कोई मनगणंत इच्छा?
इस भेद को पहचानने का सबसे स्पष्ट तरीका यह देखना है कि वह प्रेरणा इंसान को किस दिशा में ले जा रही है। कीनर स्पष्ट करते हैं कि आत्मा हमेशा व्यक्ति को नैतिक रूप से सही काम करने, गहरे प्रेम को प्रकट करने या ईश्वर के किसी बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है, नहीं ले जाएगी। और यहाँ रोमियो 8:1 और बहुत बड़ा सत्य उजागर करता है।
वो क्या है?
यह मार्गदर्शन किसी क्रूर तानाशाह या किसी ऐसे बॉस की ओर से नहीं आता जो गलती करने पर नौकरी से निकाल दे। यह मार्गदर्शन एक पिता की ओर से आता है। इसी रिश्ते को समझने के लिए पॉल गोद लिए जाने के विचार को सामने लाते हैं।
ये गोद लिए जाने की अवधारणा बहुत गहरी है। इसका सीधा मतलब यह है कि इंसान अब किसी डर का गुलाम नहीं है, बल्कि वो ब्रह्मांड के रचयिता का वारिस है।
हाँ, और यहीं पर वो मशहूर अरामी शब्द सामने आता है, अब्बा।
हाँ, रोम के लोग तो ग्रीक या लैटिन बोलते थे, फिर संत पॉल रोम के लोगों को लिखे गए पत्र में अचानक एक अरामी शब्द का उपयोग क्यों कर रहे थे?
यह इतिहास का एक बहुत ही शानदार पन्ना है। पॉलिश पत्र में बिना कोई अनुवाद दिए अब्बा शब्द का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि शुरुआती मसीह समुदाय में ये शब्द बहुत तेजी से प्रसिद्ध हो चुका था।
और ये शब्द आया कहाँ से था?
इस शब्द की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये मरकुस रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय से आता है, जब ईसु ने गतसमनी के बाग में प्रार्थना की थी।
गतसमनी का बाग, यानी क्रूस पर चढ़ाए जाने से ठीक पहले की वो भयानक और खौफनाक रात।
बिल्कुल, मौत के उस खौफनाक साए और भयंकर पीड़ा के बीच ईसु ने ईश्वर को अब्बा कहकर पुकारा था। इस शब्द के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर युआचिम जेरेमियास और गेजा वर्म्स जैसे दुनिया के सबसे बड़े विद्वानों के बीच काफी लंबी और गहरी बहस हुई है।
इस बहस का मूल मुद्दा क्या था?
जेरेमियास का तर्क था कि पहली सदी के यहूदी साहित्य में कोई भी इंसान सीधे तौर पर ईश्वर को अब्बा कहकर संबोधित नहीं करता था।
अच्छा, तो ये बहुत ही असामान्य बात थी।
हाँ, उनके अनुसार यीशु का ऐसा कहना पूरी तरह से अनोखा और क्रांतिकारी था। दूसरी ओर गेजा वर्म्स ने शोध करके बताया कि कुछ करिश्माई रबियों ने भी ऐसा किया था, हालांकि वो उदाहरण काफी बाद के काल के थे।
तो निष्कर्ष क्या निकला?
अंततः दोनों विद्वान और बाकी का एकेडमिक जगत इस बात पर सहमत हुआ कि यीशु द्वारा प्रार्थना में अब्बा का ये प्रयोग अत्यंत विशिष्ट, अंतरंग और उस समय के समाज के लिए चौंकाने वाला था।
तो क्या हम इसे आज के संदर्भ में डैडी या पापा जैसा कुछ मान सकते हैं?
ये पापा के बहुत करीब है। इसमें एक छोटे बच्चे जैसा गहरा अपनापन और अधिकार भी है, लेकिन साथ ही इसमें एक बहुत गहरा सम्मान भी छिपा है। ये कोई छिछला या असम्मानजनक शब्द नहीं था।
ये उस आत्मीयता को दिखाता है कि बच्चा अपने पिता के पास जाने से डरता नहीं है।
बिल्कुल, ये उस गहरी आत्मीयता को दर्शाता है जहां एक व्यक्ति ये जानता है कि उसका पिता पूरी तरह से भरोसेमंद है और उसे किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। ये आत्मीयता इंसान को डर की हर तरह की गुलामी से आजाद कर देती है।
अगर ये सब सच है तो हम एक ऐसे सवाल पर आ जाते हैं जो इंसानियत को सदियों से परेशान करता आया है।
कौन सा सवाल?
अगर इंसान ईश्वर के इतने करीब है, अगर वो एक वारिस है और ईश्वर उसे अब्बा कहने की इजाजत देता है, तो फिर इस जीवन में इतनी भयंकर पीड़ा, इतने कष्ट और इतनी बीमारियां क्यों हैं? ये सवाल हर उस व्यक्ति के दिमाग में हथौड़े की तरह बजता है जो किसी गहरी तकलीफ या नुकसान से गुजर रहा होता है।
देखिए, ये दर्शन और धर्मशास्त्र का शायद सबसे कठिन सवाल है, लेकिन रोमियो 8 में संत पॉल इन कष्टों से आंखें नहीं चुराते। वे ये नहीं कहते कि विश्वास करने से सारे दुख गायब हो जाएंगे।
तो वे इसे कैसे समझाते हैं?
इसके बजाय वे इन वर्तमान कष्टों को एक नई दुनिया के प्रसव की पीड़ा के समान बताते हैं।
प्रसव की पीड़ा? ये बहुत ही मजबूत तुलना है, क्योंकि उस पीड़ा का अंत मौत नहीं बल्कि एक नए जीवन का जन्म होता है।
बिल्कुल, प्राचीन यहूदी साहित्य और मृत सागर के हस्तलेखों में भी ये विचार बहुत गहराई से मौजूद है कि एक नई बेहतर और सिद्ध दुनिया के आने से पहले इस वर्तमान दुनिया को भारी उथल पुथल और कष्टों से गुजरना होगा।
डॉक्टर कीनर के जीवन में भी तो ऐसा कुछ हुआ था ना?
हाँ, डॉक्टर कीनर ने खुद अपने जीवन में 2 साल के एक ऐसे भयानक दौर का सामना किया था जहां उन्हें लग रहा था कि उनका सारा काम, उनकी पूरी जिंदगी और उनके सारे रिश्ते खत्म हो रहे हैं।
ऐसे अंधकारमय समय में कोई इंसान किस चीज का सहारा ले सकता है?
कीनर बताते हैं कि उस दौरान उन्होंने किसी खोखले या घिसे पिटे दिलासे का सहारा नहीं लिया। उन्होंने अपना पूरा वजन रोमियो 8 के उस गहरे सत्य पर डाल दिया कि ईश्वर प्रेम करने वालों के लिए सब कुछ भलाई के लिए करता है।
लेकिन जब कोई सच में टूट रहा हो तब इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता होगा।
उनका भी यही कहना है कि जब इंसान परीक्षा के भंवर में फंसा हो तब इस सिद्धांत को समझने की कोशिश करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए संकट के आने से पहले ही इस सत्य को अपने विश्व दृष्टिकोण में गहराई से बिठा लेना चाहिए।
और यहीं पर इस पूरी चर्चा का सबसे रहस्यमयी और खूबसूरत हिस्सा सामने आता है, आहें भरना।
हाँ, ये रोमियो 8 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है।
रोमियो 8 में लिखा है कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि कष्ट से आहें भर रही है। हम अपने नए शरीर के लिए आहें भरते हैं, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि स्वयं ईश्वर की आत्मा भी हमारे भीतर आहें भरती है। ये आहें भरना असल में क्या है?
रोमियो 8 के 26वें पद में इसका वर्णन है। ये उस स्थिति को दर्शाता है जब इंसान दर्द, निराशा या थकान से इतना टूट जाता है कि उसके पास प्रार्थना करने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचते।
मतलब जब हम बोल भी नहीं पाते?
हाँ, तब आत्मा हमारे भीतर से बिना शब्दों की आहें भरती है। डॉक्टर कीनर यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अकादमिक भेद भी स्पष्ट करते हैं। बहुत से लोग इस शब्द रहित आहें भरने को अन्य भाषा बोलने की आध्यात्मिक प्रथा से जोड़ देते हैं।
क्या इन दोनों में कोई अंतर है? अगर मैं इसे आसान भाषा में समझना चाहूं तो क्या ये ऐसा है जैसे किसी अनजान विदेशी भाषा में धारा प्रवाह बोलना बनाम गहरी थकावट और दर्द में बस एक लंबी सी आह भरना जब दिमाग एक भी वाक्य बनाने की हालत में न हो?
ये एकदम सटीक तुलना है। डॉक्टर कीना, जो स्वयं अन्य भाषा में प्रार्थना करने का अभ्यास करते हैं, स्पष्ट करते हैं कि अन्य भाषा में स्पष्ट शब्दांश या ध्वनियां होती हैं, भले ही प्रार्थना करने वाला उनका मतलब ना जानता हो।
लेकिन ये आहें भरना अलग है।
बिल्कुल, रोमियो 8 में जिस आहें भरने का जिक्र है वो पूरी तरह से शब्द रहित है। ये एक ऐसी गहरी और अव्यक्त मध्यस्थता है जिसे शब्दों के सांचे में ढाला ही नहीं जा सकता।
तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो इसका सार क्या निकलता है?
आप कैसे समेटेंगी इसे?
हमने ज्ञान मीमांसा से शुरुआत की, फिर साक्षियों को देखने के चश्मे पर बात की, उसके बाद कंपास की दिशा को समझा, अब्बा के साथ उस अंतरंग रिश्ते को देखा, और अंत में इन शब्द रहित आहों तक पहुंचे। ये सब दिखाता है कि सच्ची समझ सिर्फ बौद्धिक बहसों को जीतने या ऐतिहासिक तथ्यों को रटने में नहीं है।
एकदम सही।
बल्कि ये उस सही नजरिए को अपनाने में है जिससे इंसान अपने सृष्टिकर्ता के साथ एक गहरे रिश्ते में जी सके, भले ही उसके चारों ओर दुनिया टूट रही हो।
और यही वो बिंदु है जहां बुद्धि और आत्मा का मिलन होता है। हमारी बौद्धिक क्षमताएं और हमारी आध्यात्मिक अनुभूति दोनों मिलकर हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हम इस ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा हैं। ईश्वर हमारी बुद्धि को नजरअंदाज नहीं करता और न ही वो हमारे दर्द से दूर रहता है।
इस विस्तृत और गहन अध्ययन को समाप्त करते हुए ये एक ऐसा विचार है जो हम सभी को सोचने पर मजबूर कर देता है।
बिल्कुल।
हमने देखा कि जब इंसान के पास शब्द खत्म हो जाते हैं तो ईश्वर की अपनी आत्मा इंसान के भीतर दर्द में शामिल होकर बिना शब्दों के आहें भरती है।
हाँ।
तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन के सबसे अंधकारमय, सबसे टूट जाने वाले और निःशब्द क्षण, जब प्रार्थना का एक भी शब्द होंठों से नहीं निकल पाता, वे क्षण किसी आध्यात्मिक कमजोरी की निशानी नहीं है?
ये बहुत ही गहरा विचार है।
बल्कि क्या यह संभव है कि वे ही वो क्षण हैं जब इंसान उस ब्रह्मांडीय ईश्वरीय भाषा के सबसे करीब होता है, एक ऐसा समय जहां ईश्वर स्वयं इंसान के आंसुओं और उसकी खामोशी को अपनी प्रार्थना बना लेता है। ये वास्तव में एक ऐसा नजरिया है जो जीवन के सबसे बड़े दुखों को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है।